ई प्रसारण के श्रोताओं, आपको अरविंद कंसल का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, हमारा सौभाग्य है कि पुणे से आए वैद्य दिलीप गाडगिल जी आज हमारे साथ हैं आयुर्वेद पर बातचीत करने के लिए। हाल ही में आपका इंटरव्यू हमारे ई प्रसारण के मराठी चैनल पर हुआ, तो हमने सोचा कि क्यों न हम गाडगिल जी से हिंदी में भी बातचीत करें, ताकि आपके ज्ञान का लाभ हमारे सभी श्रोतागण ले सके। वैद्य गाडगिल जी ने आयुर्वेद में पीएचडी तक और संस्कृत में एमफिल तक अध्ययन किया है। पिछले 33 वर्षों में आप आयुर्वेद के क्षेत्र में अध्यापन, संशोधन और चिकित्सा करते आए हैं। आजकल आपकी पत्नी माधवी जी के साथ, जो स्वयं भी वैद्य हैं, यूएस के टूर पर आए हैं। गाडगिल जी, नमस्कार।
नमस्कार।
तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अमेरिका के यूएस के टूर पर आए हैं, इसका प्रयोजन क्या है, आपके पीछे इसके क्या ख्याल है?
उसका ऐसा हुआ है कि करीबन 3 साल पहले मेरी एक छात्रा वैद्य यशस्वी मंडूर यहां कैलिफोर्निया में फ्रीमोंट में 15-16 बरस से प्रैक्टिस कर रही है आयुर्वेद की, तो उन्होंने यहां पे एक कोर्स चालू किया था यहां के अमेरिकावासी लोगों के विद्यार्थियों के लिए, और उसके पढ़ाने के लिए मैं पहले यहां आया
जी।
और फिर उसके कुछ मरीज भी थे, उनको भी देखना था, ये भी उसके साथ में हुआ। और फिर यहां पे थोड़ी चर्चा हुई कि ई प्रसारण करके यहां पे बहुत एक अच्छा इंटरनेट रेडियो है, तो क्यों ना हम उसमें एक मुलाकात करेंगे। तो पिछले बरस में अक्टूबर में मेरी एक मुलाकात मराठी में प्रसिद्ध हुई थी
जी,
जो कैंसर, हृदरोग और मधुमेह, आयुर्वेद की दृष्टि से प्रतिबंध और उपचार पर थी, तो उसको काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। और जब मैं इस बरस में फिर से फरवरी में यहां पे आया, तो इनका कहना था कि अब और हम मुलाकातें करेंगे, तो इस समय जीवन शैली ये विषय निर्धारित किया गया
जी।
मैंने कहा कि एक मुलाकात से काम नहीं होगा,
लाइफस्टाइल की बात है, पूरी उम्र तो लगी जाती है।
वो सही है, तो इसलिए 4 मुलाकातें हुई, उसको तो और भी अच्छा प्रतिसाद मिला। तो अभी अतुल वैद्य जी ने इस प्रतिसाद को देखते हुए वो 4 मुलाकातें अभी ई प्रसारण पर उपलब्ध कराई है
जी। हाँ,
सभी समय के लिए
मराठी चैनल पर।
हाँ, नहीं तो एक एक हफ्ते के लिए ही रहती थी, अभी ये सभी समय के लिए उपलब्ध कराई है। तो फिर थोड़ी ऐसी बात चली कि मराठी लोगों के लिए तो हम कर रहे हैं, जो पूरे विश्वभर में फैले हुए, तो इसमें हिन्दी भाषिक भी कई है, तो क्यों ना हम इसको हिंदी में करें।
बिल्कुल।
और फिर अतुल जी ने ये कहा कि आप बहुत अच्छे हैं अरविंद कंसल जी, तो आपसे वो मुलाकात ले लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है,
सौभाग्य है हमारा कि आप आए, आपसे बातचीत हो रही है।
हाँ।
तो आयुर्वेद के बारे में हम लोग बात करना चाहते थे कि आयुर्वेद तो बहुत प्राचीन है, पुरातन है, बहुत एंशियंट है, और आजकल के जो मॉडर्न जमाने में जिसमें साइंस का बहुत बोलबाला है और मॉडर्न मेडिसिन का खास में, जिसमें डायग्नोस्टिक की हर रोज नई खबर आती है कि इस मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह की, तो जो इतनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, तो दोनों के कॉन्ट्रास्ट में देखा जाए तो आजकल के जमाने में आयुर्वेद की क्या क्या उपयोगिता है, उसका क्या लाभ लोग ले सकते हैं।
बराबर है। वास्तव में हम भारतीय होकर भी हमारे मन में यह सवाल उठता है, तो इसका कारण हमारी शिक्षा पद्धति में है कि बहुत सारे वर्षों से जब ये ब्रिटिश लोगों ने हम पर राज किया और हमारी पूरी शिक्षा पद्धति उखाड़ दी, तब से हम भारतीय भी भारतीय शास्त्रों से वंचित हो गए। इसमें आयुर्वेद है, योग है, अध्यात्म है, वास्तुशास्त्र है, या फिर विमान विद्या है, बहुत सारे अर्थशास्त्र है, बहुत सारे हैं, और इसलिए हमें अभी ऐसा लगता है कि ये बहुत प्राचीन है, पुरातन है, अभी मॉडर्न जमाना है सब, तो इसमें ये कैसे काम करेगा। फिर भी इसमें एक दूसरा एक अंदाजा अलग है इसको देखने का। अगर हम विज्ञान की इतिहास को थोड़ा झांक कर देखें, तो खास करके वैद्यक के बारे में हम जब देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें कुछ विभिन्न स्तर है आधुनिक वैद्य के इतिहास के। माइक्रोस्कोपिक खोज एक अहम चीज है उसमें, कि जिसमें सूक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा बहुत सूक्ष्म जो जीव है उनके बारे में जानकारी हासिल
लेवल तक देखा।
हाँ, हाँ। और ये फिर बैक्टीरिया है, फंगस है, जो फिर वायरस ऐसे है वगैरह वगैरह। फिर आगे पता चला कि इनसे रोग होते हैं, कॉलरा का जंतु पहले आइडेंटिफाई किया गया लुई पाश्चर ने। फिर फ्लेमिंगो जो इस पे ऊपर संशोधन कर रहे थे, उन्होंने पेनिसिलिन के बारे में देखा कि उससे जंतुओं का खात्मा हो जाता है। और फिर पेनिसिलिन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल दूसरे महायुद्ध में हुआ। और फिर लोगों ने यह मान लिया कि अभी सभी जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है, जो भी संसर्गजन्य इस प्रकार के जंतुओं के द्वारा उत्पन्न हो रहे जो रोग है, उन पर तो हम काबू पा लेंगे। अभी हमारे हाथ में बहुत अच्छा शस्त्र है इसके बारे में। और फिर दूसरी जगह फिजिक्स में काफी तरक्की होती रही, एक्सरेज आए, फिर अल्ट्रासाउंड आया, फिर स्कैन्स आए, एनेस्थेशिया में काफी तरक्की हुई, तो शस्त्रकर्म जो है वो बिल्कुल आसान हो गया। और फिर एनाल्जेसिक्स दवाइयां आई, स्टेरॉइड दवाइयां आई, तो इसने जादू जैसा परिणाम दिखाया। तो इस सभी का नतीजा ये हो गया कि मॉडर्न मेडिसिन जो कन्वेंशनल मेडिसिन है अभी का कहते हैं, वो पूरे विश्व भर में छा गया। और बाकी सब वैद्यक पद्धतियां अल्टरनेटिव होगी। जैसे ये क्या है कि ये सापेक्ष शब्द है, मुख्य और अल्टरनेटिव पर्याय जो है वो, कोई एक मुख्य बन गया इसलिए दूसरा अल्टरनेटिव हो गया। तो ये एलोपैथी या कन्वेंशनल मेडिसिन जैसे मुख्य मेडिसिन हो गया, क्योंकि लोगों की जो अपेक्षाएं होती है कि जल्दी से जल्दी आराम मिले, कम खर्चे में हो, शुरू में तो ये कम खर्चे में था, अभी तो नहीं है लेकिन शुरू में तो कम खर्चे में था, और तुरंत हो जाता था, इस प्रकार सिम्टोमेटिक रिलीफ का तंत्र विकसित हुआ। और ये फिर ये जो माहौल बना एक तरीके का फिजिक्स का, कि मॉनिटरिंग है, एक्सरे है, टेक्नोलॉजी है वगैरह,
टेस्टिंग का,
तो उससे भी लोग बड़े प्रभावित हुए, ये बहुत अच्छा है इस प्रकार से। जैसे दिन बीतते गए तो फिर लोगों के सामने दूसरी बाजू भी आने लगी, और ये मूल रूप तक जाता नहीं है, मूल कारणों का खोज इसमें होता नहीं है, और बीमारी पूरी तरीके से जाती नहीं है,
खासकर जो क्रॉनिक डिसीज,
क्रॉनिक डिसीजेस के बारे में, एक्यूट डिसीजेस के बारे में भी है लेकिन खास करके क्रॉनिक डिसीज के बारे में। तो फिर अभी यूएस और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं कि करीबन 65% लोग आधुनिक वैद्यक से दूर होने लगे हैं और अल्टरनेटिव की खोज कर रहे हैं, ऐसा है। इसमें चाइनीज सबसे अग्रेसर है, क्योंकि उन्होंने अपनी हिसाब से उसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छा किया, भारत में वो नहीं हो रहा। फिर भी हम जो देख रहे हैं आगे, तो आयुर्वेद का पोटेंशियल बहुत अच्छा है इस बारे में, और हम तो चाहते हैं कि आयुर्वेद पूरे विश्व भर में फैले और प्रथम पसंति का वैद्यक बने, इस प्रकार का पोटेंशियल शास्त्र में है। तो ये बात ऐसी नहीं है कि ये पुराने जमाने का है, उस जमाने का और आज के जमाने का कितना अंतर है, वो उस जमाने में ठीक था, हम हवा में जाते हैं, हवाई जहाज से सफर करते हैं वगैरह वगैरह, तो अभी ये कैसा पुरानी वाली दवा कैसे काम करेगी, ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है। सिर्फ ऐसा है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, ये सबसे अहम चीज है, और करने वाले वैद्य भी ज्यादा नहीं है, ये भी दूसरी अहम चीज है।
तो हिंदुस्तान में भी, भारत में भी किन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा है, महाराष्ट्र में, पुणे में, मैं भी खुद पुणे का रहने वाला हूं, तो इस बात से जानता हूं कि वहां पे ज्यादा वैद्य हैं, और उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, उनका प्रचलन है, वो कहीं ज्यादा है। और जरूरी नहीं कि पूरे भारत के अन्य क्षेत्रों में भी वैसा ही हो।
केरल में है, उनकी एक अपनी अपनी खासियत है, और महाराष्ट्र में है, गुजरात में कुछ हद तक है, लेकिन बाकी सब देशों में ऐसी स्थिति बिल्कुल ही अच्छी नहीं है आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो। पुणे तो वैसे हब कहा जाना चाहिए, पुणे विद्या का माहिरगढ़ कहा जाता है, तो पुणे में काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन पूरे भारत का अगर ब्यौरा लिया जाए तो स्थिति अच्छी नहीं है आयुर्वेद की, अच्छी, और विदेशों में भी वही हालत है कि ज्यादा कुछ नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा आयुर्वेद उभर आ रहा है अल्टरनेटिव के रूप में, भारत में भी और बाहरी देशों में भी, लेकिन अगर हम उसको भलीभांति समझने की कोशिश करेंगे तो ये बात बिल्कुल सामने आएगी कि आयुर्वेद कितना महान है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है।
और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसका प्रूफ और क्या होगा कि आज हम यूएस में बैठे इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जैसे आपने कहा 90-100 देशों में लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं।
बराबर, तो ये टेक्नोलॉजी का कमाल अच्छा है, बहुत बढ़िया अच्छा है,
और आयुर्वेद तो अपनी जगह पर है, और जिससे उनको लाभ हो वो इसका जरूर फायदा उठाए। तो आयुर्वेद के 8 अंग माने गए हैं, आप उनके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे?
वैसे कायबाल गर्भोर्ध्वांग शल्य दंशा जरा वृषान अष्टम अंगानी तस्या हो चिकित्सा ये संशत, इस प्रकार का सूत्र है। तो पहला जो अंग है वो काय चिकित्सा, इस प्रकार का कहते हैं। काय का जनरल मतलब वास्तव में शरीर, इस प्रकार का होता है, लेकिन यहां सूत्रकार खुद बताते हैं कि कायो नाम अग्नि, यहां जो काय शब्द का मतलब है वो अग्नि है, और अग्नि ये एक आयुर्वेद की खास संकल्पना है। हम जो कुछ भी अंदर लेते हैं, खास करके आहार और पानी, ये जो दो चीजें लेते हैं, उसका परिवर्तन करना है, उसका पचन करके उसका शरीर धातुओं में परिवर्तन करना, ये कार्य अग्नि करता है। तो शरीर के जो भी अवयव या घटक इस प्रकार के जो है वो सभी आहार से ही बनते हैं, क्योंकि हम जो लेते हैं उसी से शरीर बनता है। तो ये जो कन्वर्जन है उसका, कि बाह्य जो भी दाल रोटी चावल सब्जी मांस दूध वगैरह जो कुछ हम लेंगे, उसको अग्नि अपनी तरीके से पचा देता है और फिर उसको परिवर्तित कर देता है शरीर के भावों में। उनमें से सबसे अहम चीज है दोष, और ये दोष ही हमारे हिसाब में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। कि आयुर्वेद का कहना है कि वात पित्त और कफ या वायु पित्त और कफ, ये तीन दोष कहे गए हैं। तो दोष इसलिए कहते हैं, ये बिगड़ सकते हैं, ये बिगड़ने वाले हैं और दूसरों को भी बिगड़ाने वाले हैं, इसलिए उनको दोष कहते हैं। और जब तक इनकी एक साम्यावस्था रहती है, एक बैलेंस रहता है, तब तक सभी चीजें सुचारू रूप से चली रहती है, स्वास्थ्य बना रहता है। और जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, खो बैठता है संतुलन, तो फिर इनमें से रोगों की उत्पत्ति होती है। अब आप थोड़े चकित होंगे कि अब रोग तो बहुत सारे हैं, कैंसर से लेकर बुखार या अतिसार या प्रवाहिका ग्रहणी वगैरह बहुत बहुत सारे बवासीर है, बहुत सारे रोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं, और नए नए रोग आते रहते हैं, सिंड्रोम्स होते हैं, फिर बाद में उस रोग में उसको परिवर्तित हो जाते हैं। तो इतने सारे रोग और सिर्फ तीन दोष कैसे हो सकता है? तो हम इसके लिए कहते हैं कि संगीत का उदाहरण इसमें बहुत अच्छा है, कि संगीत में 7 स्वर है, और पुराना संगीत हो, क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत हो, या सुगम संगीत हो, पॉप म्यूजिक हो, कुछ भी हो, आज का हो, कल का हो, या आज से 10,000 बरस के बाद का हो, लेकिन 7 स्वरों के बजाय कोई संगीत नहीं है। जो भी होगा वो बेस उसका 7 स्वर ऐसा ही रहेगा, वो बिल्कुल बदलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से कौन से भी रोग हो, पुराने जमाने के हो, इस जमाने के हो, आगे वाले जमाने के हो, वो इन्हीं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, इन्हीं दोषों के, उसमें और कुछ निकलने वाला नहीं है। तो ये आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है कि दोष को भलीभांति हम समझ लेंगे तो कौन से भी बीमारी हो हम उसके लिए निदान कर सकेंगे, उसकी चिकित्सा कर सकेंगे। और इसलिए ये त्रिदोष सिद्धांत जो है वो एक मूलभूत सिद्धांत है आयुर्वेद का, लेकिन उसके लिए तपस्या चाहिए। जैसे गायक है वो रियाज करता रहता है, और जितना रियाज करता रहेगा उतना उसको बहुत अच्छा ज्ञान होता रहता है। तो उसी प्रकार के हम इसमें सोचते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, अनुभव लेते रहेंगे, तो उतनी गहराई में हमें ज्ञान होता रहेगा कि ये बिगड़ गया, ये ऐसा बिगड़ा है, इसको इस प्रकार से ठीक करना है वगैरह वगैरह। तो ये सब तपस्या का माहौल है, तपस्या अगर करते रहते हैं तो वहां भी तपस्या लगती है, यहां भी तपस्या लगती है, ऐसा है। तो ये अग्नि द्वारा ही सभी चीजें होती है, जो भी परिवर्तन होना है शरीर भावों में वो सारे अग्नि के द्वारा होते हैं और इसलिए इसको एक अहम तत्व माना गया है अग्नि को। तो वो जो है वो काय चिकित्सा कहलाती है। दूसरा जो अंग है वो बाल रोग कहते हैं, बाल चिकित्सा, खास करके आषोडश वर्षात बाल, ऐसी आयुर्वेद की व्याख्या है। 16 वर्ष तक जो है वो स्थिति, जो वय की स्थिति है वो बाल कहलाती है।
बाल
उसमें भी तीन भेद है, क्षीरप, क्षीरान्नाद और अन्नाद। 6 महीने तक केवल वो दूध पीने वाला है तो उसको क्षीरप कहते हैं, क्षीर पीने वाला, दूध पीने वाला। फिर 2 वर्ष तक दूध और अन्न दोनों चलता है और फिर आगे ज्यादा जिक्र अन्न का होता है। उसमें आयुर्वेद की कुछ खासियत है, जैसे कि जब बच्चा दूध पीने वाला होता है, मां का दूध पीने वाला है, तो मां को बहुत सारे निर्बंध रखने पड़ते हैं खाने पीने के बारे में, विहार के बारे में, क्योंकि अगर वो कुछ गड़बड़ करती है तो फिर बच्चे को तकलीफ हो सकती है,
डायरेक्ट असर,
हाँ डायरेक्ट असर होता है। तो इसलिए स्तन्य जो है, दूध जो है, वो जांच करके उसमें कुछ खराबी है या नहीं है ये देखना एक आयुर्वेद बताता है, जो कन्वेंशनल मेडिसिन में नहीं है, आयुर्वेद का विचार विशेष है इस प्रकार से। तो ऐसे कुछ कुछ है कि जिसमें हम ये बता सकेंगे कि ये बाल रोग की विशेषता है। तो ये दूसरा तंत्र रहा। ग्रह चिकित्सा एक और अलग चिकित्सा है, खास करके ये जो उन्माद जो कहते हैं, इंसैनिटी या पागलपन इस प्रकार का, या अपस्मार, ये जो फीट्स आते हैं, तो उनमें कहीं एक ग्रह रोग का अंश कुछ कुछ मरीजों में पाया जाता है और उसके लिए कुछ दैवी उपाय वगैरह इस प्रकार से भी वो सुझाव देते हैं। तो ये एक अलग तंत्र है इसका, तीसरा हुआ। फिर एक ऊर्ध्वांग चिकित्सा है कि ऊपर वाला भाग जो है गर्दन और सर, और फिर उसमें एलोपैथी में तो ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी और न्यूरोलॉजी, ये तीन अलग अलग इस प्रकार से बताए गए हैं। ये तीनों हमारे हिसाब में शालाक्य में या ऊर्ध्वांग में आ जाते हैं, और उसमें खास करके शलाका जैसे एक यंत्र होता है कि उसका इस्तेमाल उसमें होता है, इसके लिए उसको शालाक्य तंत्र भी कहते हैं या ऊर्ध्वांग चिकित्सा इस प्रकार से कहते हैं। और उसमें भी आयुर्वेद की कई खासियतें हैं, जैसे कि ये मोतिया जो होता है आंख में,
कैटरैक्ट,
तो उसके लिए शस्त्रकर्म आयुर्वेद में बताया गया है, आगे शल्य में उसके बारे में बात करेंगे। सभी इंद्रिय जो है वो सिर में है और इंद्रियों के बारे में जो विकृतियां होती है उसके बारे में, खास करके वो वायु के तत्व के हिसाब से होते हैं, वायु दोष के कारण होते हैं, तो उनकी एक अलग चिकित्सा इसमें आती है इस प्रकार से। तो उसकी एक ऊर्ध्वांग की एक अलग खासियत है। फिर एक शल्य तंत्र है। तो शल्य का मतलब शल हिंसायाम ऐसा कहते हैं, जिससे शरीर को हिंसा हो, शरीर की हिंसा होती है, पीड़ा होती है, उससे कुछ कंटक घुस गया या फिर शस्त्र हतोगत हो गए, तलवार या भाला या बाण इस प्रकार से कुछ घायल हो गए। तो पुराने जमाने से युद्ध तो चालू है
जी,
तो ये सभी चीजें तो होती थी। और फिर जैसे अभी रेडक्रॉस है कि वो युद्ध भूमि में स्थित होकर जो सैनिक है उनकी इलाज वो करती है, उसी प्रकार सुश्रुताचार्य कहते हैं कि युद्ध भूमि पर जाकर वैद्य को सैनिकों की चिकित्सा करनी है। और यहां वहां हाथ पांव कटने से लेकर पूरे पेट में बाण घुस गया, भाला घुस गया, इस प्रकार कुछ भी होता था और दूसरा कोई वैद्य था ही नहीं, तो यही था वैद्य, तो यही लोग ट्रीट करते थे। अब दूसरे दिन फिर योद्धा युद्ध के लिए खड़ा हो जाता था, इतनी बहुत अच्छी औषधियां थी उनके पास। खास करके मैंने मराठी में भी बोला था कि घृत जो है, पुरान घृत, कम से कम 10 बरस वाला या 100 बरस वाला या 1000 बरस वाला पुराना घृत, ये जख्म की बहुत अच्छी दवा है। और जैसे इस घी के वेल्स होते थे, वीर बोलते हैं मराठी में, जो कूप इस प्रकार के, उसमें संचय उसका होता था, और फिर वो उसको लगा देते रात को, योद्धा वापस आया युद्ध से, उसको लगा लिया, दूसरे दिन खड़ा हो गया फिर से युद्ध करने के लिए, इतना बहुत अच्छा
इतना उसका असर होता,
था। और इसी तरीके से दूसरे भी उसमें है कि अर्श है बवासीर, उसका शस्त्रकर्म बताया गया है। भगंदर नाम की बीमारी है कि जो ये फिस्टुलाइन एनो इस प्रकार से कहते हैं, और उसका बढ़िया इलाज आयुर्वेद में क्षार सूत्र बताया गया है, ये थ्रेड होता है जो औषधि से संपन्न होता है। और कन्वेंशनल मेडिसिन में इसका अच्छा इलाज नहीं है, शस्त्रकर्म कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्फिंक्टर अगर कट हो जाते हैं तो कंट्रोल निकल जाता है।
बिल्कुल,
तो ये बढ़िया चीज है कि वो कट भी करती है, हील भी करती है, इस प्रकार से वो भगंदर जो है ठीक होता है, उसमें रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये आयुर्वेद की खासियत है। सुश्रुताचार्य जो है आयुर्वेद के शल्य तंत्र के जाने माने चिकित्सक है, वो पहले सर्जन है और पहले प्लास्टिक सर्जन भी है। नाक कट गया था तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करके उसको फिर बिठा दिया, और उनकी जो प्लास्टिक सर्जरी थी वो 17वें शतक में यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी जो प्रचलित थी उससे कई गुना बेहतर थी। ये तो हम बात कर रहे हैं, ये करीबन 3000 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं जब सुश्रुताचार्य ने ये बताया था। और फिलहाल एक YouTube में सुश्रुत सर्जरी के बारे में एक वीडियो उपलब्ध है, और युजासिक डोमिनिक युजासिक करके लंदन में स्थित है, तो उन्होंने इस सभी बातों को सुलझाया है कि उस समय सुश्रुत ने जो सर्जरी की है वो कितनी बेहतरीन है, और यूरोप में 17वें शतक में भी सर्जरी थी वो प्रिमिटिव थी, काफी प्रिमिटिव थी। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही प्रगत था, शल्य तंत्र भी हमारा बहुत प्रगत था, ऐसी स्थिति है। फिर दंष्ट्रा की बात कही गई है, दंष्ट्रा यानी कि टूथ। हाँ, तो ये खास करके सविष्य जो प्राणी है सर्प जैसे, कि जिनके दंष्ट्रा में विष होता है, तो दंश की बात जो है विषय चिकित्सा जो है वो उसमें समाई गई है। तो उसमें सर्प है, वृश्चिक है, मूषक है, या अलर्क कुत्ता है, तो इन सभी की चिकित्सा बतलाई गई है कि उनमें लक्षण क्या होते हैं, कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार से साध्य सदत्व उनका किस प्रकार का है, कौन से मरीज साध्य होते हैं, कौन से नहीं होते हैं वगैरह। और फिर एक जरा यानी कि वार्धक्य, उसके लिए एक रसायन चिकित्सा कही गई है कि बुढ़ापा न आने देने के लिए, उसको टालने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से उसको रसायन चिकित्सा भी कहते हैं। और एक वाजीकरण चिकित्सा है कि अच्छी संतान प्राप्त हो जाए और सेक्सुअल ड्राइव जो है वो भी बढ़े, कामोत्तेजना उससे प्राप्त हुए, इस प्रकार के दो उसमें प्रयोजन है। तो अच्छी संतान बने और कामोत्तेजना भी मिले, इस प्रकार से। तो ये 8 अंग है पूरे इसके हिसाब से, और ये पूरा शास्त्र है, कार्यकारण भाव इसमें है कि ये कारण हुए इसलिए इस प्रकार के लक्षण हुए, इस प्रकार की अवस्था हुई, और फिर उसके इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। हमारा एक त्रिस्कंद कोष का कार्य हमने तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में किया था, 19 वर्ष लगे हैं उसमें। हमारे जो 4 प्राचीन ग्रंथ है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय, हर सूत्र को लेकर सभी रोगों के कारण क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनकी चिकित्सा क्या है, इसका चयन इसमें किया गया है। उसके आधार पर एक डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर भी बनाया है, एक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर भी बनाया है। जैसे कि अभी एलोपैथी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है कि इस मरीज का एक्चुअल निदान क्या है, क्या क्या विकल्प हो सकते हैं और उनमें से यही रोग क्यों है, उसी प्रकार आयुर्वेद में भी यही स्थिति थी। तो उसका एक्चुअल निदान क्या है, कारण कैसे बने हैं, लक्षण क्या है, अवस्था क्या है, और फिर उसके लिए योग्य चिकित्सा क्या है, इस प्रकार से। तो इस तरीके से उसको ये किया गया है, और ये पूरी एलैबोरेट सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि कुछ नुस्खे है और कोई मरीज आता है, कोई लक्षण लेके आया है, उसके लिए कुछ दवा दे दी, हो गया, ऐसा नहीं है।
सिर्फ सिम्टोमेटिक नहीं है।
हाँ, जैसे सिम्टोमेटिक
के पीछे पूरी साइंस है।
हाँ,
और जैसे आपने कहा प्री सिम्टम्स की बात है, सिम्टम्स की बात है, डायग्नोसिस की बात है। बहुत खूब गाडगिल जी, आपने सर्जरी की बात की, 800 आपने अंग बनाए उनमें से, तो ये तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि आयुर्वेद में सर्जरी भी है। अब मुझे भी ये बात हाल ही में मालूम हुई, इसके बारे में कुछ और बताइए।
ऐसा है कि वैद्य का शास्त्र कोई भी सर्जरी के बिना अधूरा है। दो तरीके की कंडीशंस होती है, एक मेडिकली ट्रीट करने की कंडीशंस और एक सर्जिकली ट्रीट करने की कंडीशन। कुछ प्योर कंडीशंस होती है कि जो सर्जिकली ही ट्रीट करनी है, जैसे कि ये युद्ध होता है और घाव होता है जो वहां यहां भी एक्सीडेंट होते हैं अभी, तो वहां तो आपको दूसरा कोई चारा है ही नहीं, वो जो फट गया है कहीं पे खून बह रहा है तो स्टिचेस लेना है वगैरह, ये तो करना ही चाहिए। तो उसी प्रकार का उस समय में भी था। फिलहाल दूसरी चीज ऐसी है कि जो मेडिकली हैंडल करने वाले रोग है, जिसको हमें एक्चुअली मेडिकली हैंडल करना है, तो सुश्रुताचार्य उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनको पहले मेडिसिन से ही करो। जिन व्याधियों में शस्त्रकर्म करने के लिए बताया गया है उनमें दवाइयां देना ठीक है, उचित, लेकिन जो दवाइयों के क्षेत्र में ही आते हैं उनमें कभी भी शस्त्रकर्म का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल हम देखेंगे तो एलोपैथी में शस्त्रकर्म में काफी तरक्की हो रही है, लेकिन दूसरी तरीके से देखा जाए तो ये मेडिसिन का फेल्योर है। संधिवात से लेकर कैंसर या फिर रुद्रोग, वॉल रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह, सभी जगह अभी जो तरक्की हो रही है वो रिप्लेसमेंट सर्जरी में तरक्की हो रही है। जो भी कुछ बिगड़ गया उसको सुधर नहीं सकते हैं तो उसको सर्जरी में डाल देते हैं। ये संधि काम नहीं करे, जोड़ो का दर्द है,
घुटनों में दर्द,
घुटनों में दर्द है,
हिप रिप्लेसमेंट की बात है,
तो रिप्लेस कर देंगे। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, वॉल काम कर नहीं कर रहा है, रिप्लेस कर दो। किडनी खराब हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट कर दो। लीवर का हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट कर दो, वगैरह वगैरह। तो इसमें इनका कहना ऐसा है कि जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं पे शस्त्रकर्म का इस्तेमाल आयुर्वेद में होना है, नहीं तो ये सब मेडिसिन का विषय है और मेडिसिन से ही उसको कवर करना है और करते हैं। फिर भी उस जमाने में भी ये जैसे मैंने बताया बवासीर का है, भगंदर का है, मोतिया का है, इनके शस्त्रकर्म या मूत्राश्मरी जो यूरिनरी कैलकुलस जो ब्लैडर में है उसका शस्त्रकर्म इसमें बताया गया है। और दूसरी शल्य चिकित्सा होती थी वो जो एब्सेस के विभिन्न अवस्थाएं होती है, तो शुरू में उसमें थोड़ा सा लाल रंग सा हो जाता है, बुखार थोड़ा सा आता है, फिर दर्द बढ़ता है, और एक अवस्था ऐसी हो जाती है कि उसको पाटन करके, उसका छेद करके उसमें से पस निकालना जरूरी होता है, तो ये भी शस्त्रकर्म में आता है। तो सुश्रुताचार्य कहते हैं कि ऐसी अगर स्थिति है तो उसमें वही चिकित्सा है, एक बार वो अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वही चिकित्सा
बात अगर उस हद तक पहुंचे फिर उसी से फायदा।
और दूसरे इसमें हमारे एक अनुशस्त्र नाम का एक बताया गया है, लीच जो बोलते हैं जलौ का, तो उसका पुराने जमाने से वो इस्तेमाल करते आए हैं और हमने बहुत आश्चर्यजनक परिणाम देखे हैं उसके। बवासीर की वेदना हो या माइग्रेन सुरशूल जो है तीव्र इस प्रकार का हो, दांत में दर्द हो या कोई एब्सेस हो उसमें तीव्र दर्द हो, तो इसमें लीचेस बहुत ही अच्छा काम करते हैं। एक्यूट एपेंडिसाइटिस में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया है और ऑपरेशन चले हैं उसके जरिए। तो ये एक औरत की औरत खासियत है। फिलहाल एक दो बरस पहले अमेरिकन FDA ने लीच को मान्यता दे दी है एक उपचार के रूप में, तो ये भी चौंका देने वाली बात थी। अमेरिकन FDA ने अप्रूव किया है लीच को। रशिया वगैरह में ये प्राचीन जमाने से, पुराने जमाने से जलौका का उपयोग हो रहा है, ऐसा है। भारत में तो है ही इस प्रकार का, लेकिन फिर भी अमेरिकन FDA ने अप्रूव किया, ये भी एक
अपने आप में आश्चर्यजनक
स्थिति है। तो इस प्रकार से शस्त्रकर्म के विविध अंग है इसमें और काफी महत्वपूर्ण शस्त्रक्रिया उसमें उस जमाने में भी होती थी। प्लास्टिक सर्जरी की मैंने बात की, तो सुश्रुत उसके भी जनक है और जनरल सर्जरी के भी जनक है, तो ये सबसे हमारे लिए गौरवशाली परंपरा है कि आयुर्वेद में सर्जरी इतनी विकसित थी इस प्रकार से।
आपका जो मुख्य कार्यक्षेत्र है, जो आपकी स्पेशलिटी है, वो रही है कैंसर, हार्ट और डायबिटीज यानी मधुमेह की। तो जब आप जीवन शैली की तरफ बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद से जीवन शैली किस तरह से अच्छी रह सकती है, तो इस ओर आप किस तरह से अग्रसर हुए, इस तरह कैसे बढ़े?
थोड़ा हमें पीछे जाना चाहिए इसका सवाल
आगे जाने के लिए पीछे जाना भी जरूरी होता है
इसके हिसाब से। एक 28 बरस पहले ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक मरीज आया, एडवांस केस ऑफ कैंसर, कोलेंजोकार्सिनोमा था, गॉल ब्लैडर का कैंसर था और उसमें पीलिया हुआ था जॉन्डिस। और फिर डॉक्टर ने सोनोग्राफी की, उसमें पता चला कि ऑब्स्ट्रक्शन है, तो निकालने के लिए खोला। उधर खोलने के बाद पता चला कि बहुत ही स्प्रेड कैंसर है, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने सूचर बैक कर दिया और कह दिया कि कोई चांसेस नहीं है, 15 दिन से ज्यादा आयु नहीं है, तो घर पे लेके जाओ। जाते जाते सलाह दी कि आयुर्वेद ट्राई करो। तो उन्होंने खोज शुरू की। संयोग से एक मेरा छात्र उनके रिश्ते में था, तो मुझे पूछने के लिए आए थे। ऐसी स्थिति बताई गई है कि 15 दिन की आयु बताई गई है, हम क्या करेंगे? मैंने कोशिश तो करेंगे, ऐसी क्या स्थिति है। फिर मेरे गुरु वैद्य कोल्हटकर, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी आयुर्वेद में, वो भी उस समय थे, तो मैंने उनसे भी सलाह ले ली। जाते जाते मैं उनके भी बारे में थोड़ा बता दूं, क्योंकि एक ऐसे महापुरुष थे कोल्हटकर जी कि जिन्होंने इन सभी बातों को समझा कि इस स्थिति में आयुर्वेद के लिए क्या करना चाहिए। सबसे अहम भूमिका उन्होंने ये जो निभाई, वो छात्रों पर उन्होंने पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। हमारी दो दिक्कतें थी, मूल ग्रंथ सभी संस्कृत में है
जी,
तो सभी लोग विद्यार्थी जो है, छात्रगण जो है, वो डर जाते थे, अरे संस्कृत में है, कैसे पढ़ेंगे, क्या कैसे समझेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, संस्कृत है तो क्या है, हमारी ही भाषा है, मातृभाषा की भी माता है,
बिल्कुल।
तो उसमें समझने में क्या, हम नानी को ज्यादा प्यार करते हैं माँ से भी, तो ये अच्छी चीज है, तो समझेंगे, टीकाओं का आधार लेंगे इस प्रकार से। और वो खुद भी प्रैक्टिस करने वाले थे, तो वो प्रोत्साहित करते रहे कि तुम देखो, प्रैक्टिस देखो कैसी होती है आयुर्वेद की प्रैक्टिस। तो उन्होंने बहुत अच्छा विश्वास दिलाया, ये एक सबसे अहम चीज है। तो वो भी उस समय में थे, तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसे करते, इस मरीज को हम केवल दूध के ऊपर रखेंगे, दूसरा कुछ खाना पीना देना नहीं है। ये हमारे इस सूत्र क्षीरकृताभ्यास रसायन, उसको रसायन चिकित्सा करनी है इस हिसाब से। और फिर दवाइयां शुरू कर दी, पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया, सुधरता गया। और आश्चर्य की बात है, अभी करीबन इसको 28 वर्ष हो गए इस चीज को, वो अभी भी जिंदा है मरीज, जिसका आयु 15 दिन का बताया गया था, 15 दिन से ज्यादा नहीं है ऐसा
बताया। बिल्कुल जवाब दे दिया था, और सर्जरी करने के बाद, मिलने के बाद उन्होंने जवाब दिया।
तो इसके जरिए मुझे, मेरे पास बहुत सारे मरीज आने लगे, ये पहला केस था इस प्रकार से, कैंसर में शुरुआत हो गई। फिर ऐसी स्थिति एक रुद्रोग में रही, रुद्रोग में अभी खासकर के जो आईएचडी कहते हैं, इस्टिग्मिक हार्ट डिसीज बताते हैं, तो उसमें ज्यादातर एंजियोग्राफी करने के लिए कहते हैं, फिर बाद में एंजियोप्लास्टी होती है, बाईपास सर्जरी होती है, तो ये दोनों मैकेनिकल है, एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, मूल रूप से बिगड़ क्यों गया ये देखना जरूरी है। और चाहे वो कर भी ले तो भी आयुर्वेद की चिकित्सा होनी ही है इसमें, और वो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है,
लाइफस्टाइल।
और तीसरा डायबिटीज का रहा, उसके भी मरीज, खास करके उसके कॉम्प्लिकेशंस के जो मरीज है, किडनी फेल्योर का है, रेटिनोपैथी का है, तो उसके मरीज आते रहे। और फिर मैंने देखा कि ये सभी चीजें एक ही चीज से जुड़ी हुई है, ये सभी रोग जो है वो, और वो है जीवनशैली या लाइफस्टाइल। तो जब तक उसको भली भांति समझेंगे नहीं, जब तक उसको ठीक नहीं करेंगे, तो कोई बीमारी ठीक नहीं होगी। और पूरे समाज में अज्ञान है इसके बारे में, कोई जानता ही नहीं है कि क्या लाइफस्टाइल है, कैसे करना है। और लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है कि हमें पता ही नहीं चला, इतना उसका वेग है, रफ्तार है उसकी, कि हम सोच भी नहीं सकते कि 40-50 बरस पहले हम क्या करते थे।
बिल्कुल।
एक मैंने जर्मनी में रिटा केलर करके हमारी सहयोगी रही, जहां पे मैं लेक्चर देने के लिए जाता था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका पारंपरिक आहार क्या है।
तो वो विचारों में डूब गई। फिर बहुत सोच समझ के बाद उसने थोड़ा बताया कि मेरी नानी कहा करती थी कि हम क्या करते थे उस जमाने में, विंटर है, बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर सुअर का मांस जो आसानी से मिल सकता था,
पोर्क,
और फ्लावर का हम अचार बनाते थे और घर में ब्रेड बनाते थे, क्योंकि बाहर सब बर्फ है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो इससे गुजारा होता था। अभी तो सभी मॉल्स है, सभी चीजें हैं आपके लिए,
सब जगह से आती हैं,
लेकिन ये पारंपरिक आहार होता था। अब उसने बहुत सोच समझ के फिर जवाब दिया कि मेरी नानी इस प्रकार से मुझे कहती थी। तो ये इतनी रफ्तार है बदलने की कि हम शायद सभी भूल ही गए हैं कि पहले जमाने में हम क्या करते थे। अभी हमारे पास कार नहीं होगी, हमारे पास एयर कंडीशनिंग नहीं होगा, तो हम कैसे जाएंगे? पुराने में जमाने में जैसे लोग कहीं दूसरी जगह जाते ही नहीं थे, ऐसे हम सोचने लगते हैं। ऐसी तो है स्थिति नहीं, काशी यात्रा के लिए भी जाते थे, और शंकराचार्य वगैरह तो पूरा पदभ्रमण किया है भारत देश का। तो अभी हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। तो इन सभी का मूल कारण जो है वो हमारी जीवन पद्धति है, जीवन शैली जो है वो बदल गई है, और उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो तब तक ये इन रोगों से छुटकारा पाना मुश्किल है। तो इसलिए मैं इस विषय को,
आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब तक हम इस बारे में सोचेंगे नहीं, थोड़ा विचार नहीं करेंगे, इस बारे में बातचीत नहीं करेंगे, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वरना हमें जो सामने दिखता है बाकी लोगों का कहा हुआ किया हुआ वही फिर
बराबर
पता चलता है। जीवन शैली की जब आपने बात कही तो इससे जुड़े हुए कौन से आइटम्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर विचार करना चाहिए?
ऐसा है, हम आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है। आयुर्वेद में दो शब्द है सामित, एक हो है आयुष और दूसरा है वेद। तो वेद शब्द का मूल रूप जो है तो विद धातु है, और विद के तीन मतलब है। एक तो मतलब है कि अस्तित्व होना, विद्यते अस्मिन, तो आयु विद्यते अस्मिन, जिसमें आयुष का अस्तित्व है उसको आयुर्वेद कहेंगे, ऐसा है व्युत्पत्ति के हिसाब से। विद का विद विंद ऐसा भी एक होता है मतलब, तो विंद का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना है, तो जिससे आयुष की प्राप्ति होती है उसको भी आयुर्वेद कहते हैं। और विद वेत्ति जानना, ये भी एक अर्थ है उसका। तो आयुर्वेद को जिससे जाना जाता है, आयुष को जिससे जाना जाता है वो आयुर्वेद कहलाता है। तो आयुर्वेद शब्द के तीन मतलब हो जाते हैं फिर व्युत्पत्ति के हिसाब से। एक जिसमें आयुष का एग्जिस्टेंस है, आयुष जिसमें साक्षात है, जिससे आयुष की प्राप्ति होती है या जिससे आयुष को समझा जाता है वो आयुर्वेद कहलाता है। अब ये आयुष क्या है? तो बोलते हैं कि अभी हम जिसको जीवन कहते हैं वो आयुष शब्द से निर्दिष्ट है, लेकिन उनकी एक अपनी परिभाषा है आयुष के बारे में। शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग, ऐसा वो कहते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, मन और आत्मा, इन चारों का संयोग आयुष कहलाता है। फिलहाल हुआ ऐसे कि मॉडर्न मेडिसिन में या कन्वेंशनल मेडिसिन में जो भी तरक्की हुई है वो फिजिक्स के जरिए या केमिस्ट्री के जरिए शरीर के बारे में बहुत सारी तरक्की हुई, बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म ज्ञान उसमें प्राप्त हुआ है। माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, स्कोपीज है, स्कैन्स है, बहुत सारे चीजें हैं। लेकिन फिर भी क्या हो गया है, परिवर्तन क्या हो गया है, यह समझ में आता है। ये क्यों हुआ इसके बारे में कोई नहीं है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसके आधार पर ये परिवर्तन कैसे हुआ यह हमें समझ लेना चाहिए। और उनका कोई भी ध्यान आहार विहार के बारे में नहीं है कन्वेंशनल मेडिसिन का, तो शरीर के बारे में भी उसमें अधूरापन आ जाता है। जैसे हम किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए या फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाए, कोई भी किसी भी पास जाए, तो वो परीक्षण कर लेता है, चाहे यंत्रों से परीक्षण कर लेता है, और फिर कुछ निदान बना देता है, चिकित्सा करता है, लेकिन ये पूछता भी नहीं है तुम कहां सोते कब हो, जागते कब हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो वगैरह, कुछ सोच तो विचार भी नहीं करते हैं।
नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि पिछले साल मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ कि सर्जरी हुई मेरी, तो मैंने पूछा डॉक्टर से होने के बाद कि घर जाके क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो उसने पहले मेरी तरफ देखा कि आप ये सवाल ऐसा पूछ क्यों रहे हैं, खाने से क्या लेना देना। फिर सोच समझ के बोला जब जो चाहे खा सकते, नीट एनीथिंग।
सही है, मैं एक दूसरा अनुभव बताता हूँ आपको, बहुत ही अजीब अनुभव है। एक 32 बरस की युवती मेरे पास आई, उसके ओवरी में सिस्ट था, बढ़ गया, ओवरी सूजन आ गई थी उसमें, और फिर उनको कहा गया था कि ओवरी निकाल दे सर्जरी करके। उससे 4 बरस पहले 28वें बरस में दूसरे ओवरी में इसी प्रकार का सिस्ट हुआ था, और उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इन्होंने काफी कोशिश की दवाइयों से, कुछ देखा, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो हिस्टेक्टमी कर दी 28वें बरस में, जबकि शादी भी नहीं हुई थी। तो यूटेरस को निकाल दिया और उस ओवरी को भी निकाल दिया। अब 4 बरस के बाद दूसरी ओवरी में सिस्ट हुआ, तो उनका कहना था कि अभी ये भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये कोई मेडिसिन का रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो मैंने पूछा कि तुमने कारण पूछा क्या गायनेकोलॉजिस्ट को, जिसने ये सर्जरी की, पहली सर्जरी की? तो उसने पूछा तो कुछ नहीं था, अगर पूछते भी तो जवाब क्या आता, हार्मोनल इम्बैलेंस है इसलिए ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण क्या है, कोई सवाल पूछता ही नहीं, सवाल आता ही नहीं किसी के मन में। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया और उसका कारण शायद हम पशुओं को हार्मोन्स दे रहे हैं, चिकन जो है, सुअर जो है, उसको बढ़ा देते हैं हार्मोन्स देके, वहां से लेकर तो स्ट्रेस वगैरह जो कारण है, ये मूल कारण है उसके, तो वहां तो किसी को पहुंचना ही नहीं है। और गायनेकोलॉजिस्ट ने किसी मरीज को तुम कब खाते हो, क्या खाते हो, कैसे पीते हो, ये पूछा है? ऐसा कुछ है ही नहीं। गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाए, किसी के पास जाए, या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाए, कोई भी पूछने वाला नहीं है आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या
उनके विचार में भी नहीं।
हाँ, विचार में भी नहीं है। तो मैंने पूछा कि वो आईटी फील्ड में काम कर रही थी 24वें बरस से, और पहला ही जो हमारा सवाल होता था कि सुबह कितने बजे उठती हो, तो उसका आंसर था ये निश्चित नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? वो निर्भर होता है कि जब रात को मैं कितने बजे आती हूँ उसके ऊपर वो निर्भर होता है। अगर 8-9 बजे तक आ जाती हूँ तो 5-6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन 12-1 बज जाता है तो 8-9 बजे उठती हूँ। सुबह 4-5 बजे घर आते हैं तो 11-12 बजे उठती हूँ। मैंने कहा फील्ड शाम के खाने का क्या करते हो फिर ऐसी अवस्था में? वो क्या आता रहता है, समोसा आता है, ढोकला आता है, कॉफी आती है, सैंडविच आते हैं, जो भी है मिलता है, कैंटीन में मिलता रहता है, जो भी ऑर्डर करेंगे मिलता रहता है। तो मैंने कहा आपने डॉक्टर से पूछा क्या कि ये क्यों हुआ? ये मेरा कारण है, इससे दोष बिगड़ते हैं। हमारे हिसाब में कैसा है, आसान है कि हमारे यहाँ इंटरमीडिएट एक दोष है कि इस प्रकार से आहार विहार से ये दोष प्रकोपित होते हैं, इनका असंतुलन हो जाता है और फिर ये बीमारियां होती है। तो आसान हो जाता है कि वो देखो कौन से दोष बिगड़े हैं, कैसे बिगड़े हैं, कारण को दूर करो और उसके हिसाब से उसको चिकित्सा दे दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट ही नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में, कन्वेंशनल मेडिसिन में। तो ये सब बातें सब जब ध्यान में आई कि ये हो रहा है, ये सब जीवन शैली के बिगाड़ से हो रहा है। सबसे अहम चीज जो है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी खाए पिए कुछ भी करे, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर को अगर सवाल पूछते हैं कि मैं क्या खाऊं, कोई कुछ भी खाओ, ऐसा क्या है, ऐसा कैसा हो सकता है? जब एक कार्यकारण भाव है, शास्त्र है तो कार्यकारण भाव है, अगर कार्य दिख रहा है तो उसके पीछे कारण होना ही है, ऐसा कैसा हो सकता है कि कारण नहीं हो कार्य हो जाए? ये तो बिल्कुल सिद्धांत से गलत बात हो गई। तो वो ढूंढते नहीं है, सबसे अहम चीज क्या है कि वो ढूंढते ही नहीं है। सिम्टोमेटिक रिलीफ जब से विकसित हो गया एक तंत्र, मेरा सरदर्द हो रहा है कुछ भी कारण हो, चाहे जागरण हो गया हो, कुछ टेंशन हो गया हो, धूप में मेरा घूमना हो गया हो, इस प्रकार से एक गोली खा ली एनल जैसे कि सरदर्द शांत हो गया। अब मैं ये नहीं सोचता कि ये वास्तव में सरदर्द को मिटाने वाला नहीं है, सिर्फ हमारा इम्पल्स कट हो जाता है और हमें लगता है कि सरदर्द नहीं हो रहा। उस दौरान अगर जो कारण हुआ है वो दूर हो गया तो ठीक है, अपने आप ही बड़े अच्छा हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये चीज अगर बार बार होती रहे तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि अरे बार बार हो रहा है, दवा से थोड़ी देर के लिए आराम मिल रहा है लेकिन ये फिर हो रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। वो अगर इस प्रकार से ढूंढेगा तो अलग चीज है, वो भी कहता रहेगा कि ठीक है ये नहीं तो दूसरी दवा ले लो।
बिल्कुल
हाँ, तो कोई उसका मतलब नहीं है वास्तव में। तो कहने का मतलब ये है कि आयुष जो बना है वो इन चार घटकों से बना है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। हम शरीर की बात कर रहे थे और शरीर के बारे में भी ये विचार अधूरा है कि केवल हम फिजियोलॉजी देखे या पैथोलॉजी देखे, क्या क्या बिगाड़ हुआ है, स्कोपीज करे वगैरह वगैरह। वो क्यों बिगड़ा है वो अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो काफी मुश्किल होती है। मन, आत्मा, इंद्रिय तो और परे है। अभी बहुत सारे रोगों का साइकोलॉजी एक मेन कारण है। आईबीएस ले लो आप, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम इस प्रकार का है, या स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज है, स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस इंड्यूस कैंसर भी हो सकता है, तो बहुत सारी अम्लपित्त हो सकता है, हाइपर एसिडिटी होती है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी है कि जो स्ट्रेस से रिलेटेड अभी दिखाई जाती है, और भी क्रोध वगैरह इस प्रकार के है जिसके भी बहुत सारे परिणाम दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक हमारे कोलटकर जी ने एक उदाहरण बताया था, बड़ा अजीब उदाहरण था। वो मूर्छित हो गए, शुरू में कुछ सेकंड के लिए मूर्छित हो गए कोई व्यक्ति, बाद में कुछ महीनों के बाद फिर से मूर्छित हो गए, और फिर वो 5-10 मिनट तक हुआ, फिर तीसरी बार हुआ तो 1-2 घंटे तक बेसुध रहे। इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशंस हुई और इन्वेस्टिगेशंस में पता चला कि ब्रेन को सप्लाई करने वाली कुछ आर्के में गड़बड़ी है, माल फॉर्मेशन है उसका। तो उन्होंने सलाह यह दी कि उसको लेजर करना चाहिए, लेजर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। जैसे उस डॉक्टर के पास पहुंचे तो उसने बताया कि मैं करूंगा लेकिन पिन पॉइंट तो नहीं हो पाएगा और उसके कुछ भी दुष्परिणाम हो सकते हैं, पैरालिसिस से लेकर कुछ भी होगा, तो अगर तुम्हारी तैयारी है तो करो, नहीं तो मत करो। फिर ये उलझन में पड़ गया कि करे या न करे, कैसे करेंगे। तो फिर अल्टरनेटिव के हिसाब से आयुर्वेद में आए, कोलटकर जी के पास आए। कोलटकर जी ने पूरी हिस्ट्री ले ली तो पता चला कि तीनों दफा जब ये बेशुद्धि हुई थी तो संताप हुआ था उनका, क्रोध हुआ था बहुत, और वो वैसे ही क्रोधाविष्ट होने वाले थे। तो फिर कोलटकर जी ने बताया, देखो हमारे हिसाब से तो यही कारण है, मुझे वो माल फॉर्मेशन ऑफ आर्के वगैरह कुछ पता नहीं है, लेकिन तीनों समय में आपने गुस्सा बहुत किया था और आप मूर्छित हो गए थे, तो आप गुस्से पर काबू पा लो तो आपकी बीमारी नहीं रहेगी। फिर उन्होंने कुछ उदाहरण उसके लिए दे दिए, वो भी बहुत अच्छे थे उदाहरण इस प्रकार से। और फिर कुछ ट्रीटमेंट पित्त के हिसाब से, क्रोध से हमारे यहां पित्त बढ़ता है, तो पित्त शामक कुछ चिकित्सा वगैरह ऐसी करी, बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, वो ठीक हो गए, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी इसके आगे। तो इस प्रकार से साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है और जो ही मुख्य है अगर किसी रुग्ण में, तो उनका एक अलग अंदाज है, उनको एक अलग चिकित्सा करनी है, उसको भी ध्यान में रखना है। तीसरी बात रही इंद्रियों की, कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है जिनके द्वारा हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, कर्म करते हैं इस प्रकार से, और उनका भी एक संतुलन होता है, समयोग कहते हैं उसको। तो आंख से देखना है और जितना अंतर चाहिए उतना रख के प्रकाश अच्छा होना है वगैरह वगैरह, बैठने की स्थिति बराबर होनी चाहिए, तो फिर यह समयोग होगा और जितना करना है उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे वगैरह। इससे अगर गड़बड़ी हो जाती, अंतर कम ज्यादा है, प्रकाश अच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, तो फिर ये हीन योग, मिथ्या योग, अति योग इस प्रकार से कहते हैं उसको, और फिर वो एक कारण बन जाता है इंद्रियों की विकृति का। अभी फिलहाल आपने भी चश्मा पहन के रखा है, मैंने भी चश्मा पहन के रखा है। आयुर्वेद की दृष्टि से ये तिमिर नाम की बीमारी है, जो एलोपैथी में उसको बीमारी नहीं मानते, रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब में तिमिर नाम की बीमारी है। तो कारण क्या है कि हमने इंद्रियों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। एक तो कंप्यूटर में लग जाते हैं तो बहुत सूक्ष्म चीजों को देखते हैं, जो भास्वर है थोड़ा सा कि प्रकाशमान है, दीप्त है, उसको देख रहे हैं इस प्रकार से, ग्लेयर है उसमें, तो उससे भी तकलीफ होती है, ऐसा है। तो इन सभी चीजों के कारण इंद्रियों में विकृति निर्माण होती है और उसके जरिए कुछ विकार होते हैं। अब ये गणेश उत्सव वगैरह सब चलते हैं ना, बहुत धूमधाम से जोर जोर से चलते हैं, तो काफी आश्चर्य होता है कि हम वहां से गुजरते हैं तो भी हमारे दिल में धड़कन होती है, इतने जोर जोर से बजाते रहते हैं। अब ये जो बजाने वाले लोग हैं
उनको क्या गुजरती होगी,
उनको क्या गुजरती होगी। और वो गणेशोत्सव में तो 10 दिन ये चलता रहता है माहौल पूरा इस प्रकार का, तो सरासर गलत है, सभी के स्वास्थ्य के हिसाब से सरासर गलत है। तो ये इंद्रिय इस प्रकार का इसका रोल है। और चौथा जो तत्व है वो आत्म तत्व है, तो वो तो चैतन्य है, उसके बगैर जीवन ही नहीं है। ये बाकी पंचमहाभूतों से शरीर बना है लेकिन जब तक उसमें चैतन्य नहीं आएगा उसको सचेतन शरीर तो नहीं कह सकते। तो आत्मा का एक अलग रोल है, उसके बगैर तो जीवन ही नहीं है, एक अहम
रोल है।
हाँ हाँ, उसके बगैर जीवन ही नहीं है। लेकिन आयुर्वेद की खासियत ऐसी है कि आयुर्वेद पुनर्जन्म को मानता है। भगवद गीता का जो उपदेश है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, इस प्रकार से कि एक वस्त्र को छोड़कर जैसे दूसरे वस्त्र को परिधान करता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है और वो जाते जाते अपना कर्म लेके जाता है। और वो कर्म और जो हम इस जन्म में करने जा रहे हैं वो पौरुष जिसको कहते हैं, इन दोनों के ऊपर स्वास्थ्य, आयुष ये सब निर्भर है। वो बताते हैं तयोर उदार्य रुदुक्तिर दुर्दघस्य ससुखस्य च नियतस्य आयुषो हेतु विपरीत सचेत। अगर हमारा दैव भी अच्छा है, पूर्व कर्म भी अच्छा है और इस जन्म में भी हमने बहुत तरीके से उसको अच्छा भली बात किया है, पालन पोषण उसका अच्छा किया है, तो फिर आयुष दीर्घायुष होगा, अच्छा स्वास्थ्य बना रहेगा। दोनों अगर खराब है तो वैसी ही स्थिति रहेगी। मैं एक जर्मनी का उदाहरण बताता हूं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे का उदाहरण है। 4 बरस का लड़का था, जन्म से ही कैंसर था ब्लैडर का और बाद में ब्रेन में मेटास्टेसिस हो गया। और जब मैं पहुंचा उसके घर पे तो वो डेथ बेड पे था, 2-3 दिन में मरने वाला है, ऐसी स्थिति थी। और उसकी सबसे बड़ी शिकायत उसमें थी वो पांव में बहुत दर्द होता था उसके, तो उन्होंने क्या किया था, एक पेट में वेनेसेक्शन करके मॉर्फिन की एम्पिल लगा दी थी, तो जब भी जग जाता तो रोने लगता पांव में दर्द है करके, तो वो मॉर्फिन प्रेस करते एम्पिल जो है वो मॉर्फिन रिलीज हो जाता, फिर ड्राउजी हो जाता, फिर सो जाता। तो माँ और पिता को दूसरा कोई काम नहीं, बाज में बैठे रहना और अगर वो जाग जाता है और रोता है तो वो मॉर्फिन एम्पिल प्रेस करना। संयोगवश मैं जब पहुंचा तो वो जग गया और फिर रोने लगा, तो मैंने कहा कि आप मॉर्फिन अभी मत दे दो, वो प्रेस मत करो, मैं कुछ कोशिश करूंगा। तो मैंने उनसे ऑलिव ऑयल ले लिया घर में जो मौजूद था, थोड़ा गर्म करके उसको मसाज किया हल्के हाथ से, तो 15-20 मिनट के मसाज के बाद बगैर मॉर्फिन वो सो गया। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। तो फिर मैंने मां से उसके बातचीत शुरू कर दी, क्योंकि इसी में लग गया तो बड़ी अजीब बातें सामने आई। उसकी मां का कहना था कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस था गर्भिणी अवस्था में और उसने स्मोकिंग किया, 30-30 सिगरेट का स्मोकिंग किया हर दिन में, तो प्रेगनेंसी में तो नहीं करती है लेकिन किया इसने। और फिर बालक का जन्म हुआ वो भी कैंसर के साथ ही हुआ इस प्रकार से, और पूरा लाइफ उसका मिजरेबल रहा, 4 बरस का करीबन लाइफ मिला सिर्फ। और आश्चर्य की बात ये थी कि वो फिर से प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना चल रहा था। अब उसका कहना था कि मैं इसको देख नहीं सकती, इसका दुख देख नहीं सकती, सह नहीं सकती, तो उसको मुझसे स्ट्रेस हो जाता है, और मैं स्मोक करती हूँ, फिर से स्मोकिंग कर रही थी। तो घर वाले ने समझाने की कोशिश की, डांटा, डॉक्टर ने डांटा, कुछ भी फायदा नहीं। वो अपनी एक बता रही थी, नहीं आई कांट सी हिम लाइक दिस एंड देन आई गेट स्ट्रेस एंड देन आई स्मोक। तो मैंने कहा कि देखो हमारा एक थोड़ा अलग तरीका है देखने का, केवल तुम इसमें अपराधी या दोषी नहीं हो। तो थोड़ा चौंक गए, या और के कुछ बता रहे हैं, अलग बता रहे हैं,
नई बात।
हाँ नई बात। तो मैंने कहा कि देखो इस बालक का क्या दोष है, ठीक है तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया, ठीक है ये गलत बात थी, तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, सही है। अपरेंटली बालक ने क्या किया है, उसने तो स्मोकिंग नहीं किया या उसको कुछ स्ट्रेस वगैरह था, ऐसी तो स्थिति नहीं थी। तो आयुर्वेद कहता है कि ऐसी स्थिति अगर है, कार्य तो दिख रहा है कैंसर है और चारों बरस पर का ही आयुष मिला है और मरने वाला है अभी, तो कार्य तो दिख रहा है तो कारण तो होना है, और इस जन्म में स्ट्रेस नहीं कर सकते हैं तो ये पिछली जन्म से आ रहा है, तो उसका पूर्व कर्म ऐसा कुछ बलवान है, बलवत्तर है कि इसलिए इस प्रकार का जन्म उसको प्राप्त होगा कि जिसमें केवल उसको भुगतना है। सो ही इज पेइंग फॉर हिज पास्ट डीड्स, दैट इज द इश्यू। अभी मालूम नहीं है वो पूरा खत्म हो गया नहीं हो गया, उसका अगला जन्म मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है अगर मिलने वाला है तो। फिर भी तुमने अपनी स्ट्रेस और अपनी स्मोकिंग के जरिए इस प्रकार के आत्मा को इन्वाइट किया। आत्मतत्व पंचमहाभूतों से मिल जाता है, ये गर्भ की व्याख्या जो आयुर्वेद में करते हैं। तो शुक्र शोणित जीव संयोगे खलु गर्भाशय गते, गर्भ संज्ञा होती इस प्रकार का बताते हैं। तो जीव ये जो शुक्र स्त्री पुरुष बीज, शोणित यानी कि स्त्री बीज, और जीव जो आत्मा है, इन तीनों का संयोग हो जाए तो गर्भ होता है इस प्रकार से। तो जीव वो ढूंढता रहता है कि हमारे लिए अनुकूल स्थिति कौन सी है, तो ये अनुकूल स्थिति उसने प्राप्त कर ली कि इतना सारा बोझ उठा रहा है कर्म का, भुगतना है उसको, तो ये औरत अच्छी है, इतना सारा स्ट्रेस है स्मोकिंग क्या है तो ठीक है, भुगतने के लिए अच्छी जगह है इस प्रकार से। तो अगर इस प्रकार के सोल को इन्वाइट नहीं करना है तो अभी तो तुरंत छोड़ दो स्मोकिंग इस प्रकार से। मेरे कहने का कुछ परिणाम हुआ, उसने स्मोकिंग छोड़ा। उसके बाद में बीच में वो बच्चा फिर से जाग गया, फिर उस मैंने उसके पिता को कहा कि अब तुम मसाज करो, उसके मसाज से भी वो सो गया फिर से। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सोना डाल के दूध उबाल के तैयार रखो, और फिर से वो जब जाग गया तो मैंने बताया कि उसने खाने के लिए मांगा, तो लाइफ में कुछ क्वालिटी आ गई, नहीं तो ये सिर्फ उसको मरते देखना ऐसा ही था। तो लाइफ में क्वालिटी आ गई तो 15 दिन वो जिंदा रहा, 2 दिन में बस मरने वाला था तो 15 दिन जिंदा रहा। तो इस प्रकार के कई मरीज मिलते हैं जिसमें एक आत्मा का अहम रोल है, और वैसे महाभारत हम सुनते हैं और उसमें महाभारत का एक फल बताया गया है कि व्यासस्य वचनद्वयम्, व्यास का जो है दो वचन उसमें श्रेष्ठ है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार करेंगे तो पुण्य के लिए कारण होगा, पाप करेंगे तो परपीड़ा करेंगे तो पाप के लिए कारण होगा, और पाप पुण्य के हिसाब से आपको जन्म मिलता रहेगा, आपका दैव उससे उसके जरिए बनता रहेगा। और वो आज का जो इस लाइफ में सुख दुख है उसका वो कारण पाप पुण्य पिछले जन्म का, और जो हम इस जन्म में कर रहे हैं पौरुष जो भी कुछ कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार के संचित की परंपरा हो जाती है। और इसीलिए वो बताते हैं ना कि अगर मुक्ति चाहिए तो जो कर्म किया है उसको एक बार भुगत लो, नया कर्म मत करो, गीता का जो संदेश निष्काम कर्म योग करो इस प्रकार से। तो वो करेंगे तो नया कर्म नहीं होगा तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा इस प्रकार से। लेकिन हमारे हिसाब में वो बात छोड़ो, मोक्ष की बात है, आम आदमी के हिसाब से देखेंगे तो कम से कम ऐसा कर्म तो मत करो कि जिसमें हमें तकलीफ भुगतनी पड़े, कर्म करना है तो अच्छा ही करो। तो इसमें एक आत्मा का रोल अहम चीज है, और कई बार रोगों में भी उसका परिणाम दिखाई देता है इस प्रकार के कैंसर के बारे में तो मैंने बहुत मरीज देखे हैं इस प्रकार के, कुछ समझ में नहीं आता कारण क्या है, और रोग तो है, भयानक बीमारी है। रमण महर्षि को भी कैंसर हुआ था और विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस उनको भी कैंसर हुआ था। तो ये तो साधु सज्जन, अतीव साधु सज्जन इस प्रकार के हैं,
हर किसी को। हाँ,
तो ये पूर्व जन्म का कुछ चक्कर इस प्रकार से होता है। तो इसलिए ये जो चार भाव है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इन चारों भावों का जो संयोग है वो आयुष कहलाता है, उसको जीवन कहते हैं। और फिर इन चारों का अगर हम भलीभांति विचार कर सकते हैं तो जीवन शैली के बारे में सोच सकते हैं, और फिर इस जीवन शैली के ऊपर उस अपना आरोग्य है या फिर रोग निर्माण होना ये अवलंबित है। जितनी गहराई में जाकर हम उनको समझ सकेंगे, प्रैक्टिकल में इस्तेमाल में लाएंगे, उतने हम अच्छा जी सकेंगे, आरोग्य संपन्न जीवन हमें मिल सकेगा। फिलहाल बात ऐसी है कि हम बहुत अहिक या भोगवादी हो गए हैं, हम सोच नहीं गए आगे करना क्या है, इसका नतीजा आगे क्या होने वाला है, जो हम कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता ही नहीं है कुछ। तो ये अगर एक बार हमें हम समझ जाते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो गलत चीजें हैं और ये हमें छोड़ना है और ये अच्छे तरीके हैं, उनको अपनाना है जो पुराने जमाने में लोग करते थे उस प्रकार से, अच्छा जिएंगे। तो इसलिए मैं ये जीवन शैली के बारे में सोचने लगा, इसके लिए उसका प्रचार प्रसार करना जरूरी है, ये मैंने निश्चित समझा। और जीवन के इन चार अंगों का, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, हमें विचार जरूर करना है, इसमें स्थिति है।
बहुत श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम पूरा हुआ। वैद्य गाडगिल जी से इन दिलचस्प आयुर्वेद की बातों का सिलसिला हम अगले प्रोग्राम में जारी रखेंगे, आप जरूर सुनिएगा। इसी के साथ अरविंद कंसल को अनुमति दीजिए, नमस्कार।